विषय वस्तु रखा गया है कि प्रेम की प्राप्ति में कृष्ण के शुद्ध जो प्रेम है, जैसे प्रेमा भक्ति कहते हैं, चाहे प्रेम की प्राप्ति के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए हम लोगों को 8 विभिन्न स्तरों से गुजरना होता है, सोपानों से गुजरना होता है। तो उसी की चर्चा इस सेमिनार में विशेष की जा रही है। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में इसकी विशद विवेचना हुई है। मैं घूमते रहूँगा, उतना चिंता मत करो, इधर हमें तो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में इसकी विशेष विवेचना की गई है। रूप गोस्वामी इसका वर्णन किए हैं, सांगोपांग वर्णन है। इसके पूर्व रूप गोस्वामी जी एक अन्य भी दूसरे सोपानों की भी चर्चा किए हैं कि यदि किसी को प्रेम प्राप्त करना होता है तो भक्ति के द्वारा कृष्ण को पाया जा सकता है। भगवान की प्राप्ति भक्ति योग के द्वारा होती है, अथवा कृष्ण प्रेम की प्राप्ति भक्ति योग के द्वारा होती है। तो भक्ति है क्या, पहले रूप गोस्वामी प्रथम अध्याय में यह बताते हैं कि भक्ति क्या है, और भक्ति से उनका तात्पर्य है शुद्ध भक्ति क्या है। तो हम यहीं से प्रारंभ करते हैं आज के इस सत्र को। शुद्ध भक्ति क्या है, तो रूप गोस्वामी जो इसी परिभाषा बताते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा देनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलन शीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तमा भक्ति, शुद्ध भक्ति की परिभाषा बताते हुए रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्ति के अनुशीलन में, भक्ति के जो अनुशीलन हम करना प्रारंभ करते हैं, तो शुद्ध भक्त का अथवा शुद्ध भक्ति का यह लक्षण है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, भगवान की सेवा के अतिरिक्त उस साधक में, उस भक्त में और किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होनी चाहिए। भगवान की सेवा की इच्छा आप कर सकते हैं, लेकिन इसके भक्ति के इतर जो भौतिक इच्छाएं हैं, सांसारिक इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं से शून्य रहना चाहिए। और थोड़ा हिंट भी करते हैं कि इसे ज्ञान कर्मा देनावृतम, भक्ति को ज्ञान से और कर्म से भी आच्छादित नहीं करना चाहिए, ढकना नहीं चाहिए। ज्ञान कर्म, ज्ञान से उसे ढकना नहीं चाहिए। तो ज्ञान क्या है, ज्ञान के विषय में जब चर्चा चलते हैं, आखिर जो जिस ज्ञान की आप चर्चा कर रहे हैं वह है, ज्ञान है क्या, तो हम लोगों के ब्रह्मा अनुसंधान है, निर्विशेष ब्रह्म का अनुसंधान है, अथवा यह एक धारणा है दार्शनिकों में, स्पिरिचुअलिस्ट लोगों में, कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान निराकार हैं, और जीव एक साधना करके उस ब्रह्म सत्ता में, ब्रह्म में मिल जाता है। तो ब्रह्म, जीव और ब्रह्म का जो यह धारणा है कि एक ही है, इसके विषय में जो अनुसंधान किया जाता है कि मैं कैसे ब्रह्म में मिल जाऊं, इसे ब्रह्म ज्ञान भी कहा जाता है। तो इस तरह के जो अनुसंधान है ब्रह्म के साथ, मैं ब्रह्म में मर जाऊं, भगवान में मिल जाऊं, तो यह धारणा ज्ञान भक्ति में बाधक है। भक्ति में वह व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता है, शुद्ध भक्ति में वह प्रगति नहीं कर सकता है जिसमें ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है अथवा ज्ञान के अनुशीलन में लगा हुआ है। निर्भेद विषयक ब्रह्मानुसंधान, इसी शब्द पर निर्भेद, जीव और ब्रह्म में, भगवान में कोई नहीं, भेद नहीं है, इसको तो ब्रह्म विषयक जो अनुसंधान है इसको ज्ञान कहते हैं। तो भक्ति में ज्ञान नहीं होना चाहिए, शुद्ध भक्ति में। शुद्ध भक्ति को निर्विशेष ब्रह्मानुसंधान के ज्ञान से आवृत नहीं करना चाहिए, उसे ढकना नहीं चाहिए। यदि कोई ढकता है तो वह शुद्ध भक्ति का अनुशीलन नहीं कर सकता। फिर दूसरी विशेषता उसकी बताते हैं, कर्म से भी अनावृत होना चाहिए। कर्म विशेष करके स्मृति ग्रंथों में जो विविध प्रकार के कर्मों का, जिसे हम लोग सकाम कर्म कहते हैं, सकाम कर्मों का जो वर्णन किया गया है, तो सकाम कर्म का वर्णन नहीं, उसके विषय में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। दान है, व्रत है, यज्ञ है, अनेक प्रकार के कर्म होते हैं, तो उस कर्म में भक्त की आसक्ति नहीं होती है। जिसमें कर्म में लिप्त होता है तो वह भी शुद्ध भक्ति का अधिकारी नहीं है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। और इसे साथ रूप गोस्वामी कहते हैं, ज्ञान कर्म आदि एक और चीज जिसका संकेत नहीं करके योग है, सांख्य है, वैशेषिक है, जो धारणा है वह भी नहीं होना चाहिए। और हम लोगों को थोड़ा सतर्क करने के लिए जीव गोस्वामी ये कहते हैं कि उसमें आलस्य नहीं होना चाहिए। आलसी व्यक्ति जिसमें आलस्य है तो वह भी शुद्ध भक्ति का अनुशीलन नहीं कर सकता। ज्ञान का तो अनुशीलन करना ही नहीं है, कर्मों से, सकाम कर्मों से अपने को लिप्त नहीं करना है, सकाम कर्मों में लिप्त नहीं करना है। ठीक, हम ज्ञान का अनुशीलन नहीं करते हैं, सकाम कर्म भी नहीं करते हैं, लेकिन कुछ आलस में बैठे हुए हैं, मंगला आरती हो रही तो सो रहे हैं, चाहे भगवान का जो भक्ति जो का आचरण है उसमें सो रहे हैं, आलस है, आदि से वो नहीं होना चाहिए। ज्ञान कर्मा दिनावृतम। और फिर वो विशेषता बताते हैं, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भाव से कृष्ण अनुशीलनम। तो यही भक्ति की का विशिष्ट लक्षण है, इसे स्वरूप लक्षण कहते हैं। भक्ति के विषय में रूप को जीव गोस्वामी चर्चा कहते हैं, भक्ति के एक तटस्थ लक्षण है। तो तटस्थ लक्षण है, सेकेंडरी जो लक्षण है, सिम्टम है, कि वह ज्ञान कर्म और आलस इत्यादि से अनावृत होना चाहिए। और स्वरूप लक्षण है कि शुद्ध भक्ति क्या है, कृष्ण अनुशीलनम। और कृष्णानुशीलनम की विशेषता बताते हो, थोड़ी सी रूप गोस्वामी से चर्चा करते हैं कि अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन। अनुशीलन का मतलब है प्रयत्न करना, बार बार प्रयत्न करके यत्नपूर्वक अभ्यास करना कि मेरा मन भगवान में कैसे लगेगा, हमारी इंद्रियां कैसे में भगवान में लगेंगी। इसके लिए जो उद्योग किया जाता है, यत्न किया जाता है, उसको अनुशीलन कहते हैं। और वह अनुशीलन कि हमारी इंद्रियां भगवान में कैसे लगे, लगाने के लिए कुछ अनुकूल भाव से, इसका तात्पर्य है कि आप प्रतिकूल भाव से भी भगवान में मन लग सकता है, हमारी इंद्रियां लग सकती हैं, तो वह लगती हैं। और स्वयं रूप गोस्वामी तथा जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि आप लोग इतिहास परिचित होंगे, कंस का की कथा पढ़े होंगे, आप लोग जानते होंगे, तो कंस भी बहुत कृष्ण कॉन्शस व्यक्ति था। कृष्ण कॉन्शस मतलब वो स्वप्न में सोता था, तभी स्वप्न आता था तो कृष्ण विषय एक स्वप्न आता था, सो रहा है, किसी प्रकार का आवाज़ हो गया तो उसे लगता था कि कृष्ण आ गए, हमको मारने के लिए आ गए। भय से निरंतर वह कृष्ण का ही चिंतन कर रहा था, तो उसका मन कृष्ण में लगा हुआ था, उसकी बुद्धि कृष्ण में लगी हुई थी। और इसके अतिरिक्त जब भगवान गए मथुरा में, तो कंस की प्रत्येक इंद्रियां भगवान में लगी हुई थी, आँख साक्षात भगवान को देख रहा था, और उसका हाथ जो भगवान के साथ युद्ध कर रहा था, भगवान उसे मारने चले तो चारुण और मुष्टि की इत्यादि योद्धा थे, तो भगवान के हाथों में हाथ पकड़े होंगे, भगवान की सीना से, छाती से असुर का भी छाती लगा होगा, तो बहुत निकट का संबंध था। मन से कृष्ण का चिंतन और इंद्रियों से साक्षात भगवान को पकड़े हुआ है, तो देखा जाता है कि एकदम पूरा उसका तो मन, इंद्रियां, बुद्धि सब कुछ भगवान में ही लगी हुई है। तो यह भक्ति है कि नहीं, यह है, इसको क्या अनुशीलन तो कृष्ण कॉन्शसनेस तो है, लेकिन रूप गोस्वामी जिस कृष्ण कॉन्शस भक्ति का वर्णन कर रहे हैं वह भक्ति के अंदर नहीं आता है। क्योंकि भक्ति की परिभाषा में ही प्रारंभ में ही रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण अनुकूल भाव से अनुशीलन, कृष्ण को अपना मित्र मानकर, कृष्ण को अपना पति मानकर, कृष्ण को अपना पिता मानकर, कृष्ण को अपना स्वामी मानकर जब हम अपनी इंद्रियों को उनके तरफ लगाते हैं, अपने तरफ से हमारे तरफ से अनुकूल होना है। कृष्ण को यदि उसे अच्छा भी लग रहा है उससे हमका मतलब ज़्यादा नहीं होता है, हमारे तरफ से अनुकूलता हमारे तरफ से है। कृष्ण कभी कभी प्रतिकूल, जैसे युद्ध करते हैं भगवान, युद्ध करते हैं तो कंस को बड़ा, भगवान को बड़ा आनंद आता है कंस से लड़ने के लिए। उनकी प्रतिकूलता का हमें ध्यान नहीं देना, हमें अपनी तरफ, हम अपने तरफ से अनुकूल होना है। कभी कभी भगवान प्रतिकूल भी होते हैं लेकिन हम अपने तरफ से भगवान के अनुकूल हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो भक्ति योग है। जैसे इसका टिपिकल उदाहरण है माँ यशोदा जब भगवान को बांध रही थी, कृष्ण को बांध रही थी, तो कृष्ण तो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, कह रहे थे माँ हमको मत बांधो, उनकी इच्छा नहीं थी बांधने की लेकिन माँ ने जबरदस्ती से बांध दिया। तो कृष्ण तो प्रतिकूल है, नहीं चाहते हैं, तो उनसे हमको ज़्यादा ध्यान देने साधक के तो हमको तरफ से अनुकूल है। माँ यशोदा इसलिए बांध रही कि मेरा प्रिय पुत्र है, यदि इसे नहीं बांधूंगी, नहीं इसे दंडित करूंगी तो भविष्य में वह उदंड व्यक्ति हो सकता है, इसका कुछ अनिष्ट हो सकता है, तो इसके शिक्षा के लिए मुझे तो माँ के हृदय में वात्सल्य था। भगवान उसे नहीं लाइक कर है उसे मतलब नहीं, लेकिन भक्ति है। तो माँ यशोदा का भगवान के प्रति अनुकूल भाव था, कम से कम उस समय बांधते समय, हमेशा रहता है बांधते समय तो था ही। और भगवान कंस से युद्ध करते थे, राक्षसों से युद्ध करते हैं तो उनको अच्छा ही लगता है, वो अनुकूल ही, उनको तो आनंद आता है। तो उनकी अनुकूलता प्रतिकूलता का अपने तरफ से यदि हम कृष्ण के अनुकूल हैं तो अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम है। उत्तमा भक्ति की चर्चा की गई, यह उत्तमा भक्त प्रथम अध्याय में भक्ति के जो सामान्य परिभाषा बताते हुए रूप गोस्वामी जी बताएं कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। यह उत्तमा भक्ति, शुद्ध भक्ति की यह विशेषता। यह जब रूप गोस्वामी जी चर्चा करते हैं कि उत्तमा भक्ति अथवा शुद्ध भक्ति, तो ऐसे लगता है कि कुछ अशुद्ध भक्ति भी होती होगी। अशुद्ध भक्ति तभी ना कहते हैं शुद्ध भक्ति की चर्चा कर रहे हैं, तो प्रश्न उठेगा ना क्या अशुद्ध भी भक्ति होती है, प्रश्न आएगा ना, आप लोग स्वाभाविक प्रश्न है ना। आप कहते हैं शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, तो इसका ऐसा परिलक्षित होता है कुछ अशुद्ध भक्ति भी होती होगी। तो उसके विषय में रूप गोस्वामी जी कहते हैं वास्तव में भक्ति का अर्थ अशुद्ध ही होती है, लेकिन कभी कभी उसको आच्छादित कर दिया जाता है, दूसरे चीज से ढक दिया जाता है, मिश्र कर दिया जाता है, तो उसको अशुद्ध भक्ति कहते हैं। जैसे भक्ति को उसमें ज्ञान ब्रह्म निर्भेद ब्रह्मानुसंधान विषयक जो ज्ञान है उस भक्ति में डालेंगे तो भक्ति आच्छादित होती है, उसका स्वरूप बिगड़ता है। अथवा सकाम कर्मों में हमारी रुचि होती है, सकाम कर्म के उसके साथ जोड़ते हैं तो उसको केवल शुद्ध भक्ति, मतलब जो उसमें आगंतुक जो बुराई है, आगंतुक जो गंदगी, उसी को केवल निकालना होता है, उसको निकाल देंगे तो भक्ति अपने आप में शुद्ध ही है। अशुद्ध भक्ति वह भक्ति है जिसमें बाहर से कुछ लाकर डाल दिया जाता है। जैसे सुत गोस्वामी जी वर्णन कर रहे थे सवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, अधोक्षजे भक्ति वह कहें अहैतुकी और अप्रतिहता। तो कोई हेतु से, किसी सकाम कर्म से, कोई भोग की इच्छा से, सम्मान की इच्छा से हम भक्ति करते हैं तो वह अशुद्ध भक्ति है। सवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहैतुकी, हेतु मैंने कोई कारण, भौतिक कारण से कुछ कर रहे हैं भक्ति, किसी चीज़ की भौतिक वस्तु की प्राप्ति करने के लिए कर रहे हैं तो वह हेतु बन जाता है और भक्ति को आच्छादित करता है, उसकी शुद्धता को नष्ट करता है। अहेतु की अप्रतिहता, भक्ति में सातत्य होना चाहिए, सातत्य मतलब लगातार रोज होना चाहिए भक्ति, 24 घंटे भक्ति होने चाहिए। जीवन को टुकड़े में नहीं बांटना चाहिए, चलो आधा टुकड़ा काट दिए हैं यह भक्ति के लिए है और दूसरा है दूसरा कर्म करने के लिए, पूरा बिना इसमें काट छांट किए जीवन की अवधि पूरा पूरा भगवान के लिए। तो भक्ति में सातत्य होना चाहिए, सातत्य नहीं होता है तो वह भी शुद्ध भक्ति का लक्षण नहीं है। कुछ लोग करते हैं ना, जप करते हैं, ठीक है बढ़िया से जप करें, संडे को आकर मंदिर में 16 माला जप बैठ करेंगे और 6 दिन तक सामान्य जीवन व्यतीत करेंगे, तो कहते हैं सातत्य नहीं है। तो इसकी हम चर्चा आगे जब सोपानों में करेंगे तो करेंगे। तो रूप गोस्वामी जी शुद्ध भक्ति की पहले डिफिनेशन दे सकते, उसे करेक्टरिस्टिक भी जिसकी चर्चा हो चुकी है। शुद्ध भक्ति के 6 करेक्टरिस्टिक का वर्णन, 6 गुणों का वर्णन रूप गोस्वामी करते हैं। जिस व्यक्ति में शुद्ध भक्ति आती है तो उसके में क्या होता है, शुद्ध भक्ति का स्वभाव है क्लेश अग्नि। क्लेश, क्लेश मतलब दुख द्वंद्व हमारे जो जीवन में है, तो भक्ति शुद्ध भक्ति आते हुए एकदम तुरंत इमीडिएटली नष्ट करती है क्लेश अग्नि। और शुभदा और स्पीशियस सब तरह के अच्छे गुणों को देती है। हालांकि क्या क्लेश है और क्या शुभ है, क्या स्पीशियसनेस है, अलग अलग मतलब अनेक श्लोकों में व्याख्या की गई है। हम संक्षेप में कहते हैं कि एक तो भक्ति का करेक्टरिस्टिक, प्रथम करेक्टरिस्टिक है कि दुख को नष्ट करेगी और सब तरह का कल्याण, सब तरह के अच्छे गुणों को उस साधक में भर देगी। क्लेश अग्नि शुभदा मोक्ष लहुता कृत। तीसरा करेक्टरिस्टिक भक्ति का रूप को स्वामी बताते हैं कि जिसमें भक्ति शुद्ध भक्ति आती है उसे जो मोक्ष का सुख है, जन्म मरण के चक्र से छूटकर भगवान के धाम में जाने का अथवा ब्रह्म ज्योति में मिलने का जो सुख है, वह सुख भक्त के सामने वह तुच्छ एकदम हो जाता है, तुच्छ में इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। यही तो परम फल परम पुरुषार्थ जार आगे तीर्ण तुल्य चारी पुरुषार्थ। इस भक्ति की, शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है तो 4 पुरुषार्थ, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, उसको भक्ति तुच्छ, तुच्छ माने इनसिग्निफिकेंट, उसके भक्ति माने उसका कोई महत्व नहीं रहता है। तो क्लेश अग्नि शुभदा मोक्ष लहुताकृत और एक है सुदुर्लभा। इतनी विशेषता बताने के बाद रूप गोस्वामी जी यह बताते हैं कि यह भक्ति बहुत दुर्लभ है, भक्ति दुर्लभ है, सबको प्राप्त नहीं होती है, अधिकांश लोगों को प्राप्त नहीं। यह हमारे लिए अच्छा गुड न्यूज नहीं है कि डर लगता है कि अरे भाई सबको नहीं प्राप्त है तो हो सकता है हम भी ना उसी कोटा में ना आ जाएं, नहीं वालों के ग्रुप में। तो वहां पर रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि दुर्लभ क्यों है, तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि 2 कारणों से दुर्लभ है। हम 1000 जन्म तक भक्ति में हमारा आग्रह नहीं है, भक्ति कर रहे हैं भजन में आग्रह नहीं है, उसमें रुचि नहीं है, बिना रुचि के आप 1000 जन्म तक भजन करते रहे, श्रवण कीर्तन करते रहे, आपको शुद्ध कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। तो एक तरह से कोई ऐसा साधन नहीं है जिसके द्वारा हम भक्ति को प्राप्त कर सकें। और दूसरा कारण का इसलिए दुर्लभ है कि भगवान भी और सब तो दे देते हैं और प्रार्थनाओं को भगवान जल्दी सुनते हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति की बात आती है तो वो भी उत्साहित नहीं होते हैं, वो देने में एक बार सोचते हैं कि मैं दूं कि नहीं, तो भगवान भी देने के लिए उत्साही नहीं है और हम लोगों के पास ऐसा कोई साधन नहीं है, हम लोगों की उसी तैयारी नहीं है कि हम लोग उनको प्राप्त करें, भक्ति को प्राप्त करें, इसीलिए 2 कारणों से बड़ी दुर्लभ है। क्लेश अग्नि शुभदा मोक्ष लघुता सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा। 5वां करेक्टर सांद्रानंद आनंद घनीभूत, यह आनंद है, सुख है भक्ति, शुद्ध भक्ति। और भक्ति की अंतिम और 6वां करेक्टरिस्टिक बताते हैं कृष्णाकर्षणी चषा। इस भक्ति में इतनी शक्ति है, ताकत है कि कृष्ण को आकर्षित कर लेती है एकदम, भगवान को आप बुलाएंगे तो ऐसे ऐसे सेवक की तरह आपके सामने खड़े हो जाएंगे, शुद्ध भक्ति में है। तो शुद्ध भक्ति के कुछ करेक्टरिस्टिक बताकर अब हम थोड़ा जो पूर्व का सोपान है उसके विषय में चर्चा करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में जो प्रथम एक तरह सोपान से ही वर्णन किया गया है, तो इसे हम जो पीछे हम लिखते हैं या तीन सोपानों की चर्चा की गई है, एक साधन भक्ति अर्थात साधना भक्ति भी कहते हैं, जो आपको सहूलियत है दोनों रूप में इसका प्रयोग हुआ है, साधन भक्ति अथवा कहीं कहीं शास्त्रों में इसको साधना भक्ति भी कहा गया है, क्योंकि भक्ति स्त्रीलिंग है तो उसको साधन को भी साधना कहा गया है। इन्हें हम मैं प्रयोग करता रहूँगा इसमें साधन का ही, लेकिन आप जो कोई साधना कहता है तो अभी गलत नहीं है, ठीक ही है, क्योंकि भक्ति स्त्रीलिंग है तो साधन को साधना स्त्रीलिंग बना दिया गया है। तो साधन भक्ति पहला स्टेज है साधन भक्ति, और साधन भक्ति के बाद दूसरा स्टेज होता है भाव भक्ति, और भाव भक्ति के बाद जो तीसरा स्टेज है अंतिम स्टेज हो प्रेम भक्ति अथवा प्रेमा भक्ति। भावा भक्ति नहीं कह सकते हैं, भाव भक्ति कह सकते हैं, आप चाहें तो इसको प्रेमा भक्ति भी कह सकते हैं अथवा प्रेम भक्ति, दोनों से चलेगा। तो हम लोग अभी प्रयोग में ज़्यादा प्रेम भक्ति ही करेंगे। तो साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, कृष्ण कोई प्रेम को प्राप्त करना है तो हमें प्रारंभ करना होता है साधना से, ठीक है, साधना से हम लोग प्रारंभ करते हैं। साधना के स्तर पर जाते जाते जब साधना ठीक ठीक होती है विधि के अनुसार, शास्त्रीय विधि के अनुसार जैसा आचार्यों ने वर्णन किया, हम साधना भक्ति में लगते हैं तो हमको स्वाभाविक ढंग से हम उस स्तर पर आ जाते हैं प्रेम भक्ति, भाव भक्ति के स्तर पर आते हैं, और भाव भक्ति का ठीक ठीक से अनुशीलन किया जाता है, ठीक ठीक से करते रहते हैं तो वही हम लोग प्रेम भक्ति में परिवर्तित कर देते हैं। इसके दूसरे रूप में एक समझ लीजिए, यदि ऐसे स्टेप में समझने में कुछ ऐसा लगता है कि हम लोगों को ऊपर चढ़ना है, इस कैसे भी आप ऐसे तो सुविधा के लिए ऐसे स्पेस के लिए हम लोग बनाए हैं, आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते थे, कि भक्ति रसामृत सिंधु है, स्थल है सिंधु, हम लोग कहीं ऊपर जब जाते हैं तो नीचे जाना पड़ता है, तो स्टेप नीचे भी कह सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, अथवा पैरेलल भी बनाते हैं इसे, हॉरिजॉन्टल भी, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे किसी रूप में बना सकते, हम ऐसे स्पेस के दृष्टिकोण से बनाए। तो वास्तव में साधक होता है, भक्त होता है, वह साधन भक्ति का ही आचरण करता है, साधन भक्ति ही भाव भक्ति में बदलती है, और भाव भक्ति की ही परिपक्व अवस्था है वह प्रेम भक्ति की होती है, और जब प्रेम भक्ति का सही सही आचरण किया जाता है तो उसमें फल लगता है, एक फल लगता है, उसका भी नाम प्रेम ही कहा गया है। तो हम इसको क्रम से बताते हैं, साधन भक्ति क्या है। जब यह बात आती है कि भाई साधन भक्ति करना चाहिए, साधन भक्ति, साधन भक्ति मतलब क्या करना है, साधन भक्ति मतलब क्या करें, किसको साधन भक्ति आप कहना चाहते हैं। सामान्य हम लोगों को धारणा है श्रवण कीर्तन करना, जप करना, भगवान की सेवा करना, साधन भक्ति। साधन भक्ति हम सब लोग समान रूप से परिचित हैं, साधन भक्ति मतलब कि कुछ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, चाहे भागवतम पाठ कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, श्री विग्रह की आराधना कर रहे हैं, मंदिर मार्जन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, पुस्तक वितरण, ये साधना भक्ति है। लेकिन उसी को परिभाषिक रूप से रूप गोस्वामी कहते हैं साधना भक्ति, साधन भक्ति की परिभाषा है, कृति साध्या भवेत साध्य भावाशा साधना विधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, जिस भक्ति का उत्पादन इंद्रियों से, मन से और शरीर से किया जाता है उसको साधन भक्ति कहते हैं। जिस भक्ति का आचरण देह से, इंद्रियों से और मन से, यदि हम लोग कृष्ण का अनुशीलन करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, तो इसको साधन भक्ति कहते हैं। परिभाषिक रूप कृति साध्य, कृति मतलब इंद्रिय, हमारे इंद्रिय, हमारे पास जो 10 इंद्रियां हैं और 11 मन है, इसके द्वारा हम लोग जिस भक्ति का आचरण, जिस शुद्ध भक्ति का आचरण करते हैं, जिस भक्ति की हमने परिभाषा अभी हम लोग बता रहे थे, उस भक्ति का आचरण प्रैक्टिस में हम लाते हैं जब देह से, इंद्रियों से और मन से, तो उसको साधना भक्ति कहते हैं, साधन भक्ति कहते हैं। और रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि साधन भक्ति की एक कि आवश्यक एस्पेक्ट होता है कि साधना भक्ति कोई साधन भक्ति कोई करेगा तो एक जरूर वह काम करती है, वो फेल नहीं जा सकती है, वार फेल नहीं हो सकता है। वह क्या है कि साधन भक्ति का ठीक ठीक से कोई आचरण करेगा तो वह एक भाव भक्ति का जन्म देती है। तो जो भक्ति भाव भक्ति की जननी है, भाव भक्ति की माँ है, उसको साधन भक्ति कहते हैं। मतलब साधन भक्ति भाव भक्ति का जन्म देती है। इंद्रियों से हम भाव शुद्ध भक्ति का आचरण कर रहे हैं तो वो साधन भक्ति हो गई, लेकिन वहां तुरंत इमीडिएट तुरंत बता दिया गया है कि वो भाव भक्ति को प्रकट करती है अथवा प्रेम को प्रकट करती है। साधन भक्ति का ठीक से आचरण किया जाए तो वह जरूर यह उसमें फल लगेगा ही, वह लगेगा कि भाव का फल लगेगा अथवा प्रेम को ही हम कहते हैं। वहां पर साध्य भक्ति कहा गया है, यह हाँ साधन भक्ति है और साधन भक्ति को ठीक से कोई आचरण करते साध्य भक्ति, भाव और प्रेम को साध्य भक्ति के कैटेगरी में रखा गया है। तो यह स्पष्ट है ना, साधन भक्ति वह है जिसका उपादन, जिसका आचरण शरीर मन और इंद्रियों के द्वारा किया जाता है, और जो भाव भक्ति को अथवा साध्य भक्ति को अथवा कहिए प्रेम भक्ति को उत्पन्न करती है, भाव को उत्पन्न करती है। यहाँ पर कृति साध्या भवेत साध्य भावाशा साधना साधनाभिधा। तो आप जिसे साध्य भक्ति कहते हैं, मान लो रूप गोस्वामी से पूछा, आप कहते हैं कि साध्य भक्ति का जन्म देती है, तो साध्य क्या है, साध्य क्या है हम लोगों के लिए, किस लिए हम लोग अंतिम हम लोग जो प्राप्त करना चाहते हैं वो साध्य हमारा है भगवान की प्राप्ति, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। यहाँ हम लोग प्रेम शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रेम की प्राप्ति कि कृष्ण में नित्य जो अनुराग है, स्वाभाविक हमारा अनुराग है, वह उत्पन्न हो जाए। तो वह जो उत्पन्न हो जाता है वही साध्य है। साध्य मतलब साधन के द्वारा जिसको साधा जाता है उसे साध्य कहते हैं। साधन में मीन्स साध्य मतलब इंड गोल। तो गोल है हमारा कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना हम लोग चाहते, भक्ति कर रहे हैं, एक इच्छा है कि हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाए। लेकिन हम लोग बार बार प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वहाँ पर भाषा के दृष्टिकोण से यही बताया गया, इसलिए तो कृष्ण प्रेम को क्या प्राप्त किया जाता है, हाँ वो जागृत को प्राप्त नहीं किया जा, वो नित्य प्राप्त है। कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कभु नय श्रवण आदि शुद्ध चीते करय उदय। तो यह नहीं जानना चाहिए कि हम साधन भक्ति करते हैं तो हमको वह जन्म दे देगी प्रेम का। प्रेम ऑलरेडी है आपके हृदय में, सभी जीवों के हृदय में है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम जो आप साधन करते हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए हम लोग कर रहे हैं कि वह कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते वह कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध है। कभी ऐसा समय नहीं था कि आप में कृष्ण के प्रति अनुराग नहीं था, यह कभी ऐसा अवसर नहीं था। अभी इस समय भी ऐसी बात नहीं कि आप में कृष्ण प्रेम नहीं है, और न तो भविष्य से आप में आप कृष्ण प्रेम से कभी वंचित हो जाएंगे। नित्य सिद्ध, नित्य सिद्ध मतलब एकदम आपके पास है, आपके पाकिट में रखा, आपके अस्तित्व में है, वह शुद्ध है कृष्ण के प्रति अनुराग, परंतु वह सुप्त अवस्था में है, आच्छादित अवस्था में है। तो साधन भक्ति के तौर से प्राप्त करना है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु नय श्रवण आदि शुद्ध चीते करय उदय। श्रवण कीर्तन हम लोग करते हैं, श्रवण कीर्तन नवधा भक्ति अथवा 64 प्रकार की भक्ति का जिसका वर्णन करते हैं, उसका हम आचरण करते हैं तो वह कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है अथवा प्रकट हो जाता है। यहाँ प्रकट की बात कही है, प्रेम है और वो दिखने लगेगा, अभी हिडन रूप से है, आच्छादित है अथवा सुप्त अवस्था में है। तो शुद्ध नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु नय श्रवण आदि शुद्ध चीते करय उदय। तो यह साधन भक्ति की हम बात बता रहे थे। और साधन भक्ति में आप लोग जानते हैं बहुत बहुत सा करना होता है। रूप गोस्वामी जी इसी अध्याय में, दूसरे अध्याय में 64 प्रकार के भक्ति का वर्णन करते हैं। फिर भक्ति करने में कुछ अपराध होता है, सेवा अपराध होता है, नामा अपराध होता है, कैसे बचना चाहिए सेवा करते समय, कृष्ण काउंसिलन करते समय, यह सब बातों का उसमें निरूपण है। अब इसके बाद हम भाव भक्ति के विषय में थोड़ी बात बताएंगे। साधन भक्ति की परिपक्व अवस्था हो जाती है तो भाव भक्ति हमें प्राप्त होती है। भाव भक्ति मतलब क्या है? भाव भक्ति की भी परिभाषा संस्कृत में एग्जैक्ट परिभाषा थोड़ा समझने में कठिनाई होती है संस्कृत को ही देखने, फिर हम मैं हिंदी में उससे प्रयत्न करूँगा समझाने का। भाव भक्ति की परिभाषा रूप गोस्वामी बताते हैं, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग रुचिभिश्चितमा श्रेण्यकृत अशोक भाव उच्यते। रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो भक्ति है, भाव है, भगवान की स्वरूप शक्ति। अब हम जब स्वरूप शक्ति कहते हैं तो आप लोग एक भगवान की बहिरंगा शक्ति है और एक अतरंगा शक्ति है, तो अतरंगा शक्ति को स्वरूप शक्ति कहते हैं और भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उसको माया शक्ति कहते हैं, माया शक्ति। और स्वरूप शक्ति मतलब अतरंगा शक्ति, और स्वरूप शक्ति में भी, स्वरूप शक्ति के भी तीन भेद होते हैं, जानते हैं ना तीन भेद, संधिनी संबित हिलादिनी शक्ति। तो जो जो भाव क्या है, भगवान की जो अतरंगा शक्ति है, चाहे इंटरनल पोटेंसी जी कहते हैं, इंटरनल पोटेंसी, और उसमें भी जो भगवान की हिलादिनी शक्ति है, प्लेजर पोटेंसी है, उसका एक तरंग विशेष है, वो तो समुद्र है हलादिनी शक्ति का अथवा अतरंगा शक्ति का। तो उसका भाव भक्ति क्या है, उसका एक तरंग है, और इसको कहते हैं कि यह प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग। रूप गोस्वामी कहते हैं कि इसकी तुलना, यदि प्रेम की तुलना सूर्य से की जाए, मतलब हम तुलना करना चाहते हैं कि प्रेम है वह सूर्य है, तो भाव क्या है, किरण है उसका, भाव उसका किरण है, प्रकाश, उसमें प्रकाश निकलता है। और इसको इस रूप में बताया गया है कि सुबह में आप लोग कभी कभी देखते हैं सूर्योदय होने से पहले सूर्य उदित हो रहा है, 6 बजे सूर्योदय होता है, तो 5:30 के बाद, 5:15 के बाद अंधकार दूर होने लगता है, अंधकार दूर हो जाता है, सूर्य तो दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन उसका प्रभाव हमें दिखाई पड़ने लगा। तो उसी तो प्रेम तो हमारे हृदय में नहीं होता है, लेकिन प्रेम के कुछ, प्रेम के जो कार्य होते हैं उसका कुछ कार्य होने लगता है, तो उसको भाव कहते हैं। फिर रूप गोस्वामी उसी बात को, प्रेमणस्तु प्रथमावस्था भाव इत्यभिधीयते, प्रेम की पूर्वावस्था को भाव कहते हैं। एक भाव की परिभाषा एक तो बता दिया कि भगवान की हलादनी शक्ति की वृत्ति विशेष है, वह उसकी तुलना किरण से जी, यदि प्रेम सूर्य है तो भाव की तुलना उसे किरणों से की जा सकती है, किरणों के स्वरूप है। और यह कार्य क्या करती है भाव भक्ति जिसी में आते हैं, तो भाव भक्ति के प्रवेश करते ही रुचि भी शीतमा श्रेण्य, रुचि मतलब टेस्ट, भाव भक्ति आते हैं तो भगवान की भक्ति इतनी अच्छी लगने लगती है, भगवान इतने अच्छे लगने लगते हैं, तो उस अच्छा लगने से हमारा हृदय मसृण, मसृण मतलब सॉफ्ट हो जाता है, वो बहने लगता है, जैसे बर्फ कहीं रखा हुआ है, जोर से हवा चलती है अथवा सूर्य की किरण पड़ती है, तो स्वाभाविक वह प्रवाहित होने लगता है। तो हमारा हृदय जो कठोर है, भाव भक्ति के स्तर पर आते हो उसमें सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है, मक्खन के समान सॉफ्ट हो जाता है, पहले बहुत हार्ड रहता है सबका, हम लोग का हार्ड रहा है सबका है, देखो वो। तो प्रेम भक्ति उसे क्या करती है, उसे आश्रय कृत, उसे नरम कर देती है, उसे सॉफ्ट कर देती है, इसको भाव भक्ति कहते हैं। और इसकी एक विशेषता होती है कि सात्विक स्वल्प मात्रा स्युः, भाव भक्ति के स्तर पर जब एक भक्त पहुंचता है तो उसमें भी सात्विक विकार, हम लोग बार बार सुनते हैं कि प्रेम के अष्ट सात्विक विकार होते हैं। प्रेम जिसको आता है तो उसके शरीर में, मन में, इंद्रिय में एक प्रकार का परिवर्तन होता है, एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसे विकार कहते हैं। तो अष्ट सात्विक विकार, उसमें एक विकार है कि आँखों का हमारा स्वाभाविक यह रूप है, लेकिन जब वह होता है तो आँख में आंसू आ जाता है अथवा शरीर में रोमांच होता है, इसको विकार कहते हैं। आपके शरीर में कुछ विकृति आ गई, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, यह विकार गुड सेंस में है, विकार मतलब खराब महसूस, मतलब खराब हो गया, स्थिति परिवर्तित हो गई। तो भाव की अवस्था में रूप गोस्वामी सात्विक स्वल्प मात्रा स्युह सात्विक विकार होते हैं, अश्रु है, पुलक है, यह थोड़े मात्रा में होते हैं, तो इसको भाव कहते हैं। तो भाव का कि भगवान की अतरंगा शक्ति और उसमें भी भगवान की जो लादनी शक्ति है, उस शक्ति के वृत्ति विशेष रूप में है, विशेष है, और यह जब ही हमारे हृदय में प्रकट होती है भक्त, हमारे हृदय को वह सॉफ्ट बना देती है, तो उसको हम लोग भाव भक्ति कहते हैं। तो दूसरा स्टेज है, और इसके बाद प्रेम भक्ति है। आप लोग घबराइएगा, हम फिर से एकदम श्रद्धा पर आएंगे, हम थोड़ा एक आउटलाइन दे रहे हैं कि जब बार बार हम मैं प्रयोग करते रहेंगे प्रेम भक्ति, भाव भक्ति, साधन भक्ति, तो आपके हृदय में क्लियर हो। हमें प्रारंभ करना है श्रद्धा से और आज के आसक्ति तक ही हमें जाना है, अपने को सीमित रखना है। लेकिन चूंकि यह रास्ता, ये जो जितने सोपान बनाए गए हैं, तो यह वर्णन किया गया है कि प्रेम की प्राप्ति में कौन कैसे गुजरता है, तो ऐसा लगता है कि रूप गोस्वामी यहाँ खड़ा होकर बता रहे हैं कि आपको आना है तो इन दशाओं यहाँ से आना पड़ेगा, इसलिए बार बार हमको प्रेम को, भाव को टच करना पड़ रहा है। क्योंकि रूप गोस्वामी लगता है कि यहाँ पर खड़े होंगे, वहाँ से निर्धारित करने कि आप आएंगे तो वहाँ वह पड़ेगा, ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, इसीलिए अन्यथा कोई दूसरा कारण नहीं है। तो हम थोड़ा प्रेम के विषय में जो पारिभाषिक रूप में बताया गया है, तो प्रेम में क्या होता है, प्रेम भक्ति में क्या होता है, सम्यक म श्रृणतो श्वांत ममत्वाति शयांकिता है भाव स एव सान्द्रात्मा बुधय प्रेमा निगद्यते। पहले हम बताए, रूप गोस्वामी बताए कि भाव भक्ति से आपका हृदय कोमल हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, तब भाव भक्ति में। प्रेम भक्ति की विशेषता बताएं कि सम्यक मश्रणता, वो खूब बढ़िया से, कुछ दूसरी बात नहीं कह रहे हैं, मैंने जो पहले जो आपका हृदय सॉफ्ट था तो उसको और सॉफ्ट बना देती है, सम्यक मन सम्यक में समझते हैं, सम्यक रूप से उसे बढ़िया से उसे सॉफ्ट कर देती है। और प्रेम भक्ति में एक और विशेषता आ जाती है, एक तो भाव भक्ति की परिपक्व अवस्था में हुई, लेकिन एक एडिशनल गुण आता है ममत्वातिशयांकिता, भगवान के प्रति ममता होने लगती है। ममता अब जानते हैं ना, ममत्व, मम मेरा, ऐसे भक्ति करते हैं, नीचे के स्तर पर आते हैं, भगवान हैं, सर्वेश्वर हैं, तीनों लोकों के स्रष्टा हैं, तो उनमें आंतरिक ममत्व नहीं होता है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। प्रेम भक्ति की चर्चा कर रहे हैं, इसमें एक एडिशनल क्या हो जाता है, ममत्व, अतिशय ममत्व। जैसे मान लीजिए हम लोगों का देश का कोई प्रधानमंत्री है, इस हम मानते हैं स्वामी हैं, हमारे देश के शासक हैं, राजा हैं, लेकिन है राजा ठीक है, वोट दे गए, कोई ज़्यादा कोई ममत्व नहीं है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि आपके घर का आपका भाई कहीं प्राइम मिनिस्टर हुआ होता है, तो ऐसे जैसे हम लोग सोचते हैं राजा के विषय में, वही नहीं, उसके विषय में एकदम ममता, कहाँ जा रहा है, क्या बोल रहा है, उसको कोई हरा ना दे, फिर से अगला इलेक्शन में भरा पड़ रहा है, उसके हित की चिंता करते हैं। तो जब प्रेम भक्ति उत्पन्न होती है किसी के हृदय में, तो कृष्ण के प्रति ममत्व उत्पन्न हो जाता है, कृष्ण मेरा पुत्र है, कृष्ण मेरा मित्र है, कृष्ण मेरे पति हैं, ममत्व, कोई संबंध युक्त ममत्व, एक अपना व्यक्तिगत पर्सनल कोई संबंध युक्त ममत्व हो जाता है। तो दो विशेषताएं, एक तो वो अलग की विशेषता नहीं बताई गई, भाव भक्ति ही हृदय को सॉफ्ट कर ही रहा था, प्रेम में ज्यादा सॉफ्ट कर दिया तो उसमें क्रिया, लेकिन दूसरा गुण आ गया कि ममत्व अतिशयांकिता, अतिशय ममत्व होता है, कृष्ण मेरे हैं,
अथवा मैं कृष्ण का हूँ।
भाव स्व एव सान्द्रात्मा बुधय प्रेमा निगते। रूप गोस्वामी कहते हैं कि भाव ही जब अपनी पूर्णावस्था में होता है, परिपक्व अवस्था में होता है, वही घनीभूत होता है, तो बड़े बड़े विद्वान लोग भाव को ही प्रेम कहते हैं। तो हम लोग इतना ही कह सकते, प्रेम मतलब दूसरे भाव को हम बताना होगा तो यह कह सकते हैं कि प्रेम की पूर्वावस्था को भाव कहते हैं और भाव की परिपक्व अवस्था को, पूर्णावस्था को प्रेम कहते हैं। ये थोड़ा सर्कुलर रहता है एक दूसरे को परिभाषा हुआ, लेकिन थोड़ा समझने के लिए तो ग्लिम्स मिल जाता है। और प्रेम भक्ति होती है तो जो सात्विक विकार होते हैं, पहले में कहा कि भाव भक्ति में सात्विक विकार अल्प मात्रा में होते हैं, आंखों में कभी कभी आंसू आता है, जप करते करते हो सकता है कि एक सप्ताह में चाहे एक दिन कभी आ जाए, कम आता है। पुलक कभी कभी बढ़िया से कीर्तन हो रहा है, कोई भगवान की कथा सुने, बढ़िया से जप हुआ, तो किसी किसी दिन होता है। भाव भक्ति में रहेंगे तो प्रेम भक्ति में आ जाएंगे तो मैंने आप लाख प्रयत्न करेंगे कि आंसू रुक जाए, लेकिन आपके बस की बात नहीं रहेगी। शायद हमेशा वो कहा गया है कि भक्तों का जो शरीर होता है, शरीर के ऊपरी का भाग, पनसफल कहते हैं यहाँ पर, कटहल, कटहल का देखे हैं आप लोग फल पनस, उसमें ऊपर ऊपर होता है ना, तो यदि प्रेम भक्ति आप लोगों को प्राप्त होगा, किसी को प्राप्त होगा, तो शरीर विकृत हो जाएगा, इसमें ट्रांसफर वो ऐसा सॉफ्ट नहीं रहेगा, चाहे कितना भी आप कोई भी किसी प्रकार का पाउडर का, स्नो का, किसी प्रकार का लगाएंगे, मलहम लगाएंगे, होगा नहीं। तो वह वैसे अधिक मात्रा में हो, अष्ट सात्विक विकार अधिक मात्रा में होने लगते हैं। तो यह समान रूप से, लेकिन हम लोगों को जैसे हम बता रहे थे कि हम लोगों को आज की मुख्य रूप से रुचि की भी तो थोड़ी चर्चा हो चुकी है, आसक्ति के विषय में बताना है। तो चूँकि यह एक सोपान रूप से है तो यहाँ तक आना ही पड़ता है कि श्रद्धा से ही प्रारंभ करते हैं। तो इस सोपान का, भक्ति में प्रेम प्राप्ति का प्रथम सोपान है, इमीडिएट जो सोपान होता है वो उसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा होती है, श्रद्धा मतलब श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्णे भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, यह इसको श्रद्धा कहते हैं। शास्त्र के वाक्यों में पूर्ण विश्वास होने लगता है कि जो उसमें कहा गया है वह सत्य है, भगवान हैं, मेरा भी स्वरूप है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान हमारे स्वामी हैं, भगवान की भक्ति करने, इस पर विश्वास होने लगे तब वो उसको श्रद्धा कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि फिर श्रद्धा हो गया, इसके बाद श्रद्धा के बाद साधु संग करते हैं, श्रद्धा होती है कि हमें भगवान की प्राप्ति करना है, भजन करना है, तो ढूंढने लगते हैं कहाँ से प्राप्त हो सकता है, तो प्रयत्न हम करते हैं, अपने से ढूंढते हैं कि उस विज्ञान को जानने वाला जो हम भगवान की प्राप्ति जो करा सकता है तो उसको ढूंढ लेता है, उसको साधु संग कहते हैं। प्रयत्न करके साधु संग मतलब वो जो हमारा प्राप्तव्य है, हम जिसे प्राप्त करना चाहते हैं, उस रास्ते पर कोई चला हुआ व्यक्ति, उसका जानकार, उसके पास हम जाएंगे और जाकर पूछेंगे कि कैसे हमें भगवान की प्राप्ति हो, कैसे हमारे भगवान का प्रेम, उसको श्रद्धा कहते हैं। तो उसे साधु संग कहते हैं। तो श्रद्धा से साधु संग होता है, ऐसे अश्रद्धा से तो होता ही नहीं है, और श्रद्धा भी जो तमोगुण या रजोगुण होगा तो उससे भी नहीं होता है, लेकिन हम जब श्रद्धा का प्रयोग कर रहे हैं तो गुड सेंस में कर रहे हैं, सात्विक श्रद्धा होती है, सच्ची श्रद्धा होती है, हृदय से श्रद्धा होती है, तो हम साधु संग कहते हैं। तो यहाँ पर हम वो बताने से पहले एक बात, यह प्रश्न आता ही है कि श्रद्धा कहाँ से आती है, श्रद्धा का क्या कारण है, कैसे उसको साधु, कहाँ से श्रद्धा आ जाता है, श्रद्धा कैसे हमारे हृदय में जग जाती है।
तो
हाँ पूर्व इस जन्म में है, जो पूर्व जन्म की बात है, पूर्व जन्म में हम थोड़ा भक्ति किए हैं, साधु संग हुआ है, चाहे भक्ति किया है, तो वो अपने आप श्रद्धा हो जाती है, जन्म से ही श्रद्धा हो जाती है। लेकिन एकदम हम बिगिनिंग की बात कहते हैं, उस जन्म में भी श्रद्धा का क्या कारण है? हाँ साधु संग, ऐसे उसको ऐसा लगता है कि रूप गोस्वामी जी पहले छोड़ देना चाहते थे, इसीलिए वो थोड़ा सा उस पर समझने के लिए, तो उन्होंने कहा कि अथ केन अपि अति भाग्य न जात श्रद्धोस्य सेवने नाति शक्तो न वैराग्यो, तो वह इसका अधिकारी होता है। यो रूप गोस्वामी केन अति भाग्य न, हम नहीं पता है, पता नहीं किस भाग से अति भाग से उसका श्रद्धा हो गया। भगवान भागवतम में भी उद्धव को उपदेश देते समय ही बताते हैं, यदृक्षया मत भक्त मत मत कथादौ जात श्रद्धस यह पुमान। भगवान भी कहते हैं कि यदृक्षया, पता नहीं किस कारण से मेरी कथा श्रवण में उसकी श्रद्धा हो जाती है। तो भगवान भी लगता है कि इमीडिएट उत्तर नहीं देना चाहते थे, कहाँ से यदृक्षया, कहीं से हो जाती है। रूप गोस्वामी किसी अति भाग्य से, कोई ऐसा भाग्य हुआ होगा, कुछ कर्म हुआ होगा जिसके कारण। लेकिन जीव गोस्वामी जी और विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि ऐसे कहने से तो काम नहीं चलेगा, कि आप कहते हैं कि के न अपि अति भाग्य न, किसी भाग्य से भगवान कहते हैं यदृक्षया हो जाता है, पता नहीं कैसे होता है। इसे कहते हैं कि ऐसे तो अंततः यदृक्षया ही है, भगवान की कृपा होती है, लेकिन भगवान की कृपा श्रद्धा कैसे होती है कि हठात कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई साधु का मुलाकात हो गई और उसके साथ बैठकर श्रवण कीर्तन आपने किए हैं, तो उसे श्रद्धा उत्पन्न होती है, और वो श्रद्धा होती है तो फिर वह साधु संग कराती है। जैसे आप लोग गाँव में देखे हैं, हम लोग को ऐसा गाँव में कभी कभी होते हैं लोग शाम को बैठ कर रामायण पढ़ने लगे, तो कुछ लोग आकर, बच्चे हैं वृद्ध लोग आकर बैठ जाते हैं, तो उसे पढ़ते हैं, तो उसे बातें लिख कथा पढ़ते हैं, तो उनको तो उसी से श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो साधु संग से ही, और वह जरूरी नहीं कि वह दी साधु हो, जिसे हम लोग कर स्ट्रिक्शन, वो साधु नहीं भी हो सकता है, लेकिन किसी न किसी कारण से वो थोड़ा सा कुछ उसमें श्रद्धा है, रामायण पढ़ता है, महाभारत पढ़ता है, गीता पढ़ता है, शाम को पढ़ा था उसके, आप बैठ गए और बैठ गए तो उसको उसमें बातें हो रही थी, तो उसमें जो बातें हो रही थी उसको थोड़ा विश्वास आपको होने लगे, अरे तो कुछ अजीब बातें हैं, इसको हमको ही प्राप्त करना चाहिए, उसे श्रद्धा कहते। तो श्रद्धा का भी मूल कारण भक्ति ही है, श्रद्धा ही है। तो श्रद्धा होती है तो श्रद्धा से साधु संग होता है, तो हम उसकी चर्चा उस दिन करते हैं कि साधु संग यत्नेन साधु मिलनम, प्रयत्न करके, प्रयास कर, उद्यम हमको करना चाहिए और साधु के साथ मिलना चाहिए, और जाकर वहाँ पर भगवान के विषय में चर्चा करनी चाहिए। वो भगवान जब कहते हैं शाब्दे परे च निष्णात ब्रह्मणि उपसमाश्रय तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, शाब्दे परे च निष्णात ब्रह्मणि उपसमाश्रय समास, तो तब वो आदेश दिया गया है कि इसे क्या करना चाहिए कि तस्मात गुरुम प्रपद्येत, गुरुम साधु, गुरु को पद्य करना चाहिए, किस लिए? जिज्ञासु, जिज्ञासु होकर, श्रेय उत्तम, उत्तम श्रेय के लिए, उत्तम श्रेय है कृष्ण प्रेम से भक्ति है, उसके लिए प्रयत्न करा, तो उसे मिलना होता है साधु से, सत्संग करना होता है, उसके भजन क्रिया की शिक्षा लेनी होती है कि कैसे हमें करना चाहिए, क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या विधि है, तो उसको साधु संग कहते हैं। मतलब कि उसके संरक्षण में रहकर श्रवण कीर्तन करना, भगवान की लीला का, गुण का, रूप का वर्णन करना, सुनना, साधु, उसको साधु संग कहते हैं। तो श्रद्धा प्रथम स्टेज है, दूसरा साधु संग। जब साधु संग होता है तो यह अपरिहार्य है किसी व्यक्ति के लिए, यदि वह सचमुच साधु है तो वह उसको भजन क्रिया में लगाएगा। यदि सचमुच हमारा साधु से मुलाकात हो जाए, हमने साधु संग किया, उचित जेन्युइन ऑथराइज जो प्रमाणिक साधु हमको मिला है, तो हमको वह भजन क्रिया में लगाएगा। भजन क्रिया इसके बाद वहीं से प्रारंभ हो जाती है, जैसे भजन क्रिया का। तो इसके वह है कि भाई तब दूसरे नहीं साधु, हम तथाकथित साधु के संसर्ग में जाएंगे, सत्संग तो नहीं भी हो सकता है, उल्टी भी बातें हो सकती है, लेकिन गुड सेंस में हम प्रयोग करते हैं, साधु संग हमने किया तो हमारी भजन क्रिया प्रारंभ होती है। भजन क्रिया मतलब समय श्रवण कीर्तन, जो नव विधा भक्ति योग का, भक्ति की बात प्रहलाद महाराज कहते हैं, अथवा उसी के 64 अंगों का जो वर्णन किया गया है भक्ति के, उनको उसको भजन क्रिया कहते हैं। उसमें लग जाए सुनना, श्रवण कहते हैं, श्रवण भक्ति है। भगवान के विषय में बोलना, कीर्तन करना, उनके विषय में उनके गुणों का वर्णन करना अथवा नाम का कीर्तन करना अथवा जप करना, ये भजन क्रिया है। इस तरह 64 है, और प्रहलाद महाराज नवधा भक्ति की चर्चा करते हैं, तो विभिन्न तरह से उनको भजन क्रिया कहते हैं। तो हमारा जो साधु संघ हुआ है तो भजन क्रिया, भजन क्रिया में विविध प्रकार के, कल ही एक दिन पहले बता रहे थे उसके उस विविध आयाम है, उसमें क्या क्या दिक्कत है, कैसे उसको पार करना होता है, वो तो डिटेल वर्णन है। तो यह स्टेज है जब भजन क्रिया ठीक से होता है तब हमारे अनर्थ, अनर्थ मतलब कि अनेक अनेक जन्मों के संचित कुछ हम में है, हमारे अस्तित्व में कुछ दोष है, भरा पड़ा हुआ है, कुछ गंदगी है, उसको अनर्थ कहते हैं। और सबसे भयावह, सबसे खराब यह दोष है हम लोगों में कि मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा है हमारे। मुक्ति मतलब ब्रह्म साजुज्य, सुने के साथ भजन करते करते हम भगवान में एक दिन मिल जाएंगे, यह सबसे बड़ा अनर्थ है। लेकिन यह बड़ा हिडन रूप से, सूक्ष्म रूप से रहता है। प्रैक्टिस में, प्रैक्टिकल जो हमें डे टू डे जिसको इनकाउंटर करना होता है, वह अनर्थ है कि इस प्राकृत जगत में प्राकृत भोगों को भोगने की इच्छा, यह है जो कि हमको प्रतिदिन इसे इनकाउंटर होना पड़ता है, रोज रोज इसके झगड़ा करना पड़ता है कि क्या करना होता है कि प्रतिदिन हम लोगों को इसे होना पड़ता है। भोग भोगने की इच्छा हम लोग में डिवलप हो गई है, कहाँ हम कृष्ण की सेवा में थे, कृष्ण के नित्य सेवक हैं, और भगवान की नित्य सेवा में हमारा मन नहीं लग रहा है, और यहाँ पर तथा कहीं तुच्छ यहाँ के रूप रस गंध स्पर्श सुअर जैसा जीवन हम बिताते, हम नित्य सच्चिदानंद में स्वरूप को विस्मृत हैं, हमको पता ही नहीं है कि हम लोग कौन हैं, और इसने गंदे इतने अपवित्र स्थान में आकर और यहाँ के भोगों को भोगने की इच्छा कर रहे हैं, इसको करते हैं अनर्थ निवृत्ति। विविध प्रकार के पाप करते हैं, तो जब भजन क्रिया ठीक ठीक होती है तो अनर्थ ये सब जो दोष हैं हमारे, मुख्य रूप से पाप कहिए, ऐसे एकदम बढ़िया से समझना चाहिए उसे कि पाप, जो हमें पाप करने की प्रवृत्ति है, जो पाप है वह नष्ट हो जाता है। अनर्थ अनर्थस्य प्रारब्ध अप्रारब्ध पापस्य निवृत्ति नाश। अनर्थ निवृत्ति मतलब मोटा मोटी समझ लीजिए कि हमारे पाप नष्ट होते हैं। भगवान की भक्ति में यह स्वाभाविक गुण है, आप भक्ति करेंगे जैसे आग में कोई चीज़ सूखी लकड़ी डालेंगे तो लकड़ी को आग जलाएगी, क्षमा नहीं कर सकती। जैसे शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, आपके संचित है प्रारब्ध और अप्रारब्ध जितने पाप हैं, जितने दोष हैं, वो भस्म करती है। भगवान भगवद गीता में चर्चा हुआ ज्ञान के संदर्भ में, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण, ज्ञान की अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो जितने दग्ध जो कर्मों का जो स्टॉक है, पापों का जो सूखी लकड़ी के रूप में तुरंत दग्ध करते हैं, भस्म सात तिरजुनों भस्म के रूप में पड़े। तो भक्त यहाँ देखिए, इस पर हमें अब यहाँ से तो हम बढ़ रहे हैं जैसे, लेकिन अब यहाँ पर हमको रुकना होता है। साधक यहीं रहता है, भजन क्रिया के स्तर पर ही वह भजन करता है, अनर्थ निवृत्ति के लिए वह एडिशनल कुछ नहीं कर रहा है, वो होता है। आप जब जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, माने भजन क्रिया में लगे हुए हैं, तो अनर्थ निवृत्ति के लिए एडिशनल आपको कुछ नहीं करना है, वो होता है। तो अनर्थ जब निवृत्ति हो जाता है, अनर्थ समाप्त हो जाता है, हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो हमारे हमें निष्ठा उत्पन्न होती है। इसकी जीव गोस्वामी कहते हैं निष्ठा मतलब विक्षेप रहित सातत्य। विक्षेप कोई बीच में क्या इंटरप्शन ना, वो टुकड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए। सातत्य, सातत्य मतलब सतत, कंटिन्यूअस, निष्ठा आ जाती है, वो प्रतिदिन अब निरंतर वो भगवान की भक्ति में लगता है, भगवान का भजन करता है, उसको निष्ठा स्टेबल हो जाता है। ऐसे ष्ठ शब्द है, ष्ठ मतलब एक जगह रहना, टीका रहना, इतना तिष्ठ मैंने अजग अलग एक जगह रहते हैं तो उसको ष्ठ कहते हैं। निष्ठा मतलब नितराम ष्ठ एकदम, वह अब उसको कितना भी आप धक्का देंगे वो होट न हो नहीं सकता, कहीं कोई सीमेंट से जोड़ देते हैं, कोई पत्थर को लगा देते हैं तो उसको जल ऐसा नहीं करके आप उसको हटा देंगे हाथ से। तो ष्ठ मतलब हो गया, कहाँ ष्ठ कहाँ स्थिर हो गया है, भगवान की भक्ति में। भगवान की भक्ति में मतलब भजन क्रिया में, भजन क्रिया अब वो करेगा, रोज करेगा, निरंतर करेगा, तो वो उसको कहते हैं निष्ठा। जब निष्ठ हो जाता है, निष्ठा उसमें आ जाती है, तो दूसरा एक गुण होता है रुचि उसमें होती है। रुचि यह संस्कृत का शब्द है, हिंदी के भारतीय सभी भाषा अनेक भाषाओं में इसका प्रयोग किया गया है, और सामान्यतः हम रुचि का अर्थ जानते हैं, जानते हैं ना। रुचि का भले ही आप लोग उसकी डिफिनेशन न दे सकें, लेकिन सामान्य धारणा है कि रुचि क्या है, टेस्ट। हाँ, अंग्रेजी शब्द से पहले टेस्ट, हाँ स्वाद ही कहिए, मतलब ऐसे केवल स्वाद कहने से नहीं चलेगा। कभी कभी हम लोग कुछ खाते हैं तो एकदम अरे वो तो ऐसा खराब टेस्ट होता है कि फेंक देना पड़ता है, तो यहाँ गुड सेंस में लिया गया है। हाँ? क्या आस्वाद, रस का आस्वाद, मतलब अच्छा लगता है, कोई चीज खाते हैं तो वह अच्छा लगता है, सुस्वाद मतलब वो प्रिय, जीभ जिसे पसंद करती है और डिमांड भी करती है और चाहिए। कुछ ऐसी खाते हैं, कोई चीज़ ऐसे हमको खाना पड़ता है बाध्य होकर, स्वाद ठीक नहीं लगता है लेकिन अब तो खाना पड़ रहा है क्योंकि कोई बीमारी होती है। हाँ, प्रवृत्ति जिसको चाहिए, जैसे यहाँ हम कहते हैं कि कुछ इस तरह की एक केवल स्वाद कहने से कहीं नहीं होता है, स्वाद तो मतलब खराब टेस्ट भी हो सकता है, बैड टेस्ट गुड, तो यहाँ गुड सेंस में रुचि, खाते हैं तो और खाने की इच्छा होती है, तो इसे कहते हैं कि भोजन में रुचि हो रही है। किसी को देखते हैं तो और उसे देखने की जो रुचि होती है और इच्छा होती है उसको रुचि कहते हैं। लगी अच्छा लगना, क्या अच्छा लगना, यहाँ पर रुचि भोजन के लिए नहीं कहा गया है कि भोजन में रुचि हो जाए, भजन अच्छा लगने लगे, जप अच्छा लगने लगे, जप करते हैं तो जप में अच्छा लगने लगे और उसमें बुद्धि भी वो अच्छा लग रहा है और हमारा बुद्धि भी सहयोग करती है कि हाँ ये बहुत अच्छा है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे हैं, हालांकि वो ये समझिए हम इस संदर्भ में इसको समझाने के लिए नहीं उदाहरण दे रहे हैं, हम थोड़ा सा एक तरह आउट ऑफ, कभी कभी लोग देख आप लोग देखे हैं कि कोई बाहर का व्यक्ति आया, कीर्तन हो रहा है, खूब कुछ अच्छा लगता है, कीर्तन हो रहा है बढ़िया बढ़िया, लेकिन उसे मन अरे सब नाच गान लोग कर रहे हैं, ध्यान करना चाहिए, चाहे हमारा बिजनेस है, तो अच्छा तो लग रहा है लेकिन बुद्धि कोऑपरेट नहीं कर रही, वो स्वीकार नहीं कर रही है। कहीं होता है ना आप लोग बहुत बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करना चाहिए, लेकिन हमको पूना में रहना चाहिए, एक हमारा दुकान है, ऐसा होगा ना। तो यह ठीक है, मन से तो अच्छा ही लगता था कि आए हैं तो तब तक अच्छा भी लगता है, जब गए तो उधर का बात है, लेकिन रुचि में जो रूप गोस्वामी जो बातें बताते हैं, रुचि मतलब बुद्धि भी स्वीकार करती है ना, एक ठीक है यही होना चाहिए, और मन तो बेचारा वो तो अच्छा ही लगता है, इसको रुचि कहते हैं। तो रुचि में थोड़ा सा अंतर आप समझ रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है भजन की क्रिया, श्रवण कीर्तन जप करने में अच्छा लग रहा है, कीर्तन करने में अच्छा लग रहा है, और मंदिर मार्जन बहुत अच्छा लग रहा है, और बुद्धि भी एकदम सपोर्ट कर रही है कि ना 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 ठीक है ठीक है ठीक है, वो सपोर्ट क्या कोऑपरेट कर रही है, सहयोग दे रही है, हाँ लालसा भी रही, तो इसको बुद्धि भी सहयोग दे रही है और अच्छा लग भी रहा है। क्या अच्छा लग रहा है, भजन की के जो अंग हैं श्रवण कीर्तन भजन, ये समझ नहीं, इसको क्लियर कहेंगे हम रुचि बताने जाए, रुचि आसक्ति कुछ दूसरा नहीं है। यदि आप रुचि में थोड़ी सी भूल करेंगे तो आसक्ति आप समझ नहीं पाएंगे, आप सोचेंगे दोनों एक ही है। तो भजन का है श्रवण कीर्तन चाहे जो कुछ भजन 64 अंग है, खूब अच्छा आपको लगने लगा, बुद्धि भी सजोग, तो उसको कहते हैं रुचि। मैं इस पॉइंट तक क्लियर हूं ना? तो इसके नेक्स्ट स्टेज है आसक्ति। आसक्ति का अर्थ है यही अच्छा लगना, लेकिन जो हमारा अच्छा लगने का जो विषय था उसमें थोड़ा परिवर्तन होता है। आसक्ति जब होती है तो भगवान अच्छे लगने लगते हैं डायरेक्ट। इसका यह भी देखिए हमेशा सावधान रहने चाहिए, इसका अर्थ नहीं है कि श्रवण कीर्तन भक्ति जो में रुचि कम होगी, रुचि ज्यों की ज्यों और बढ़ेगी उसमें करने में, परंतु एडिशनल होगा कि आपको भगवान का रूप, जैसे यहाँ पर भगवान पंडरीनाथ खड़े हैं तो दर्शन करें तो रूप सच वो अच्छा लगने लगेगा, भगवान अच्छे लगने लगेंगे। तो रुचि में भजन अच्छा लगता है और आसक्ति में जो भजन का जो विषय है कृष्ण अच्छे लगने लगते हैं, भगवान का के परिकर अच्छे लगते हैं, उनका कपड़ा अच्छा लगने लगता है, उनकी बंसी अच्छी लगने लगती है, देखते हैं उस पर आकर्षित होता है। तो यही आसक्ति और रुचि में अंतर है, अथवा उसी तरह से भाव और प्रेम की बात बता रहे हैं तो उसी क्रम में यही समझिए कि रुचि की जो पराकाष्ठा है, रुचि का जो पूर्णावस्था है, तो पूर्णावस्था में पहले तो भक्ति की क्रियाएं अच्छी लग रही थी और भक्ति के जो विषय हैं, जो उसके आलंबन है, भगवान भी अच्छे लगने लगे, इसमें भक्ति भी अच्छी लग रही है और भगवान भी अच्छा लगने लगे, तो उस अवस्था को रूप गोस्वामी जी आसक्ति कहते हैं। तो यह क्रम हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए, आप यह मत समझिए कि आप निष्ठा पर पहुंच गए तो आपकी श्रद्धा में किसी प्रकार की कमी आई है, श्रद्धा और दृढ़ हुई है और साधु संघ भी और दृढ़ हुआ है, भजन क्रिया भी और दृढ़ हुआ है, अनर्थ निवृत्ति है तो बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है, निष्ठा भी आपके पूरी हो रही है। तो यह सामान्य रूप से यह एक जो हम लोग कैसे बढ़ते हैं, तो बढ़ने में भी यह जानना चाहिए वो कैसे कैसे भगवत प्रेम हमारे हृदय में धीरे 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 रिवील होने लगता है। तो इसमें है कि रुचि में थोड़ा बौद्धिक सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आसक्ति एकदम स्वारसी होती है, स्वाभाविक होती है, एकदम स्वारसी स्वाभाविक नेचुरल ढंग से। तो और भी थोड़ा सा एक अंतर बताया गया है, जो पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं, पूर्णतः पाप नष्ट हो जाते हैं तो भगवान के भक्ति में रुचि होती है, भगवान की भक्ति अच्छी लगने पाप, और जब अविद्या भी नष्ट हो जाता है जो कि उससे भी पाप से भी थोड़ा सटल है, अविद्या अज्ञान जो कि हमारे पाप का कारण बनता है, तो अविद्या भी जब नष्ट हो जाता है तो हमें आसक्ति की आसक्ति आती है। यह थोड़ा सा सटल अंतर है। तो श्रद्धा से प्रारंभ होता है साधु संघ, साधु संघ से भजन क्रिया, भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा, निष्ठा से रुचि, रुचि से आसक्ति और आसक्ति के बाद भाव होता है। तो जिसकी चर्चा महाराज जी करेंगे वो दो आगे के वो भाव होता है। इसी को चैतन्य चरितामृत में जब रूप गोस्वामी जी को भगवान चैतन्य महापुरुष शिक्षा दे रहे थे, तो हम उसको पढ़ लेते हैं कि यहाँ एक क्रीपर बनाया गया है, एक लता बनाया गया, तो इसका कुछ ऐसे बनाया गया है, डेकोरेशन के लिए हम लोग नहीं बनाए हैं, किसी आशय से बनाए हैं, तो उसको भी हम थोड़ा सा आपको कहना चाहेंगे। ये भक्ति लता कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति लता यह शब्द का उपयोग किया है। लता मतलब जानते होंगे क्रीपर, अंग्रेजी में क्रीपर कहते हैं, एक पेड़ होता है, पौधा होता है, एक प्रकार के पौधा ही है, लेकिन उसको बढ़ने के लिए कुछ सहारा देना पड़ता है, किसी का सहारा चाहिए तो बढ़ता है, उसकी शोभा भी चाहो तो उसको ऊपर चढ़ता है। तो यह प्रेम प्राप्ति का सोपान है, पहले साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, और प्रेम भक्ति में ही यह प्रेम हमको प्राप्त हो जाता है। तो साधना भक्ति में इतने स्टेज हैं, कितना अच्छे हैं ना,
छः, एक दो तीन चार पाँच छः, अरे क्या कर, एक दो तीन चार पाँच छः।
अशीष ले आठ है,
ठीक है। कि मिलते नहीं करो जो आपकी चर्चा कर रहे थे, तो यानी आप देखिए तो ये ईश्वर साधन भक्ति कहते हैं, जिनके वो दो रूप में वर्णन कर रहे हैं, तो यह है साध्य भक्ति है, ये दोनों को एक है, साधन भक्ति और साध्य भक्ति। तो जो साधन भक्ति की अवस्था में ये होते हैं, स्टेजेज होते हैं, और श्रद्धा और भजन क्रिया का फल है कृष्ण प्रेम है, केवल प्रेम लिखा गया है, हम लोग कृष्ण भी कह सकते हैं, कहना ही चाहिए कृष्ण प्रेम, चाहे प्रेम प्राप्त होता है। और यह पता नहीं आप लोगों को स्पष्ट हो रहा है नहीं, कि भगवान का चरण बनाया गया है, भगवान के चरण स्पष्ट हो रहा है, चरण है, तो यह एक लता है, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते जाकर भगवान के चरणों का आश्रय लेती है। हमें चर्चा कर ठीक है, आप तो स्पष्ट ही कौन सा इसमें नहीं है, इसको दोनों को एक है कि ये दोनों एक है,
कोई किसी को श्लोक याद है वो? तो निष्ठा, निष्ठा तो अलग से विषय है, एनी हाउ अब तो पता नहीं है तो हमको। आदो श्रद्धा, हाँ ठीक है, इसके इस ठीक है ना, आठ प्रचलित हो गया है इसलिए अब आज नौ को ठीक है इसको यानी हाउस से। तो जब यह हम लोग इस स्टेज से बढ़ना होता है, लेकिन हम लोगों को यही खड़ा रहना पड़ता है भजन क्रिया तक, ऊपर का काम स्वाभाविक रंग से होता है, वहाँ जाना नहीं होता, उधर केवल साधक जो है यही खड़ा रहता है, यहीं पर रहता है। इसको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, गुरु की कृपा से साधु की कृपा से उसे भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। तब क्या है, माली हैया करे से बीज आरोपण श्रवण कीर्तन जले करे से चन, गुरु साधु हमको बीज देते हैं, सीड देते हैं, तो जब प्राप्त हो जाता है सीड तब क्या करना है, घर में नहीं रखना है, अथवा कुछ बीज प्राप्त हो गया चलो उसको कुकिंग करके खा जाए, माने कोई गेहूं आपको दे दिया एक किलो चाहे चलो भून कर खा गए, अथवा घर में रखे हैं, ऐसे माली हैया करे से ही बीज आरोपण, माली जानते हैं ना, माली जो गार्डन लगाते हैं फूल और फल के जो पौधा लगाते हैं उनको माली कहते हैं, विशेषकर फूल का, वो गन्ना की खेती नहीं करते हैं, फूल लगाते हैं बाजार में जाकर मंदिर के सामने बेच, उनको माली कहते हैं। तो यह लता का बीज प्राप्त, माली हैया करे से ही बीज आरोपण, तो आपको करना होगा मिल गया तब उसको आरोपण करना, एक खेत में ले जाकर उसको रोपना होता है, नीचे डालना होता है, वहाँ माली है या करे से ही बीज आरोपण डाल दिया जमीन के अंदर, फुलका करके कुदाल से अथवा खुरपी से कोड़ कर रख दिए और उसमें बीज डाल दिए, और श्रवण कीर्तन जले करे से चन, सूखा इस साल तो यहाँ बारिश हुई है अच्छी बात है, महाराष्ट्र में ऐसे भी जगह एकदम जमीन सूखा हुआ है, मरुभूमि ला कर उसे बो दीजिए तो जमेगा नहीं, उसमें जमाने के लिए क्या होगा कि माली है या करे से बीज आरोपण श्रवण कीर्तन जले करे से चन, जल से सिंचन करना पड़ता है, जल क्या है श्रवण और कीर्तन, श्रवण कीर्तन मैंने भक्ति जो पूरा 64 अथवा जो नौधा भक्ति, श्रवण कीर्तन जले करे से चन, यहाँ वह रोक दिया तो उपज या बाढ़े, तो उसमें से जो एक लता कृपर उत्पन्न होती है, उपज या बाढ़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए बिरजा ब्रह्मलोक भेदी पौरव्यम जाए, तो उसमें एक लता जो क्रिपर होती है, उसे सिंचन श्रवण कीर्तन करते हैं तो जमता है और वह आगे जाना प्रारंभ करते हैं। तो ब्रह्मांड को भेदते हुए स्वर्गीय लोगों को स्वर्ग के सुखों से आकर्षित नहीं होती है, ब्रह्मा जी के लोग से ब्रह्मांड कहीं नहीं, उसको चैन नहीं पड़ता, वो सब सबको पार करते करते, मैंने यहाँ स्वर्ग लोक है, यहाँ महर लोक है, जन लोक है, तप लोक है, ब्रह्मा जी का लोक है, वो बढ़ती जाती है लता। कल्पना कीजिए कि वह उसको इधर रुकती नहीं है, उस कहीं आकर्षित नहीं होती है। तबे जाए तदुपरि गोलोक वृंदावन, लता इधर संतुष्ट नहीं है तो बढ़ते 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 गोलोक धाम में प्रवेश करती है, भगवान का धाम, कृष्ण का धाम है, वैकुंठ जहाँ धाम है, और वहाँ पर भगवान बंसी बजाते हुए खड़े रहते हैं। तो लता, हम पहले बताए हैं कि वो क्रीपर को कोई आश्रय होता है तभी तो बिना पकड़े वो चैन नहीं लेती है, आगे बढ़ती है, तो वहाँ पर उसे हठात कृष्ण का जो चरण है वो पकड़ लेती है, लता पकड़ लेती है कृष्ण के चरणों में, वो उलझ जाती है, सुलझ जाती है, तो उसको चयन हो जाता है, वो समझ लगे मैं अपने गंतव्य स्थान पर लता आ गई, ऐसा समझिए। तो वहाँ जब पहुँचती है तो तुरंत उसमें फूल, पत्ता तो पहले ही से है, उसमें फूल के पहले क्या कहते हैं इसको, कली, उसमें कली आने लगती है। तो कली रुचि कली है, जिस हम रुचि की आज चर्चा कर रहे हैं ना, रुचि यह रुचि, रुचि कली है और आसक्ति फूल है, इसे नहीं ये रुचि और आसक्ति दो, रुचि है कली है, अविकसित कली, वो मतलब कि नहीं के बराबर, प्रत्येक पता भी नहीं लगता है कि पत्ता है कि कली है, लेकिन वो आसक्ति के रूप में आती है तो उस पूरा पूरा पता लगने लगता है कि हाँ कुछ उसमें एक जगह पर फूल आएगा, इसे कली कहते हैं। हाँ, खिली हुई नहीं, खिलती हुई बंद, और जब वह जो पूर्ण खिल जाता है तो उसको भाव कहते हैं, और अंत में उस लता में एक फल आता है, वह है प्रेम। तो मान लीजिए उस लता में, आपके लता में फल आ गया, तो आप क्या करेंगे, वहाँ फल फल फलता है यहाँ पर, तो वहाँ पर टपक कर गिरता है, आप यहाँ खड़े हैं ऐसे, इसलिए यहाँ पर यदि आप खड़े हैं तो वहाँ से फल गिरता है, फल पक जाता है तो अपने आप स्वाभाविक परिपक्व अवस्था होता है तो गिर जाता है नीचे, और गिर जाता है तो जो रोपने वाला माली है वो प्राप्त करके उसका आस्वादन करता है, खाता है। तहाँ विस्तारिया हया फले प्रेम फल यहाँ माली से चिन्हित श्रवण आदि, जो फल आने लगा वहाँ से टपकने लगा, खाता भी है, लेकिन उस समय भी सिंच पानी डालता रहता है, ऐसा नहीं कि फल आ गया तो पानी डाल देंगे तो वो ठीक नहीं है, पत्ता सूख सकता है, इसलिए यहाँ पर श्रवण श्रवण कीर्तन जले कर ऐसे माली वहीं खड़ा रहता है, तल में थाला में रहता है, नीचे जा रहता है जमीन पर, निरंतर श्रवण कीर्तन करके उसे सींचता रहता है। तहाँ विस्तारिया है या फले प्रेम फल यहाँ माली सेचे नित्य श्रवण आदि, जो यह नहीं समझना चाहिए कि हम लोग को प्रेम प्राप्त हो जाता है तब तो हम सिद्ध हो गए, तब क्या भजन करना है, भाई प्रेम प्राप्ति हो गया तब किस लिए भजन करेंगे, क्या जरूरत है, वो नहीं चेतन में हरकर ना, ऐसा नहीं करना है। फल की प्राप्ति हो गई तो भले पहले तो थोड़ा सा कुछ दिक्कत से भी होता था, अब और उत्साह के साथ श्रवण कीर्तन होता है, भगवान की सेवा और उत्साह के साथ और बढ़िया से निरंतर लग जाता है। तो यह भक्ति के क्रम का, भक्ति का जो विकास है वह कैसे हमें प्राप्त होता है, तो यही ना जान लीजिए, श्रद्धा के बाद जब साधु संग करते कम नहीं होता है और बढ़ता जाता है, नीचे का और भी सुदृढ़ होता जाता है, और प्रेम के प्राप्ति होने के बाद भी जो भक्त है वह मुख्य रूप से भजन क्रिया ही करता है। हम उसके, हमें थोड़ा कम ही समय था, नहीं तो हम उसकी चर्चा किए होते, जब साधन भक्ति की चर्चा की गई है तो साधन भक्ति के दो भेद बताए गए हैं, एक वैधि भक्ति और एक रागानुगा भक्ति। तो पूर्वावस्था हमारी वैधि भक्ति होती है, वैधि भक्ति मतलब गुरु के आदेश के अनुसार शास्त्र का अनुशासन मानकर हम भक्ति करते हैं, भाई श्रवण कीर्तन बढ़िया से करते हैं, लेकिन किस लिए कि शास्त्रों में आज्ञा दी गई है, शास्त्रों में आज्ञा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वर श्रोतव्य कृतव्य ध्येय पूज्यस्य नित्यदा, शास्त्र में कहा गया पूजा करना चाहिए, भजन करना चाहिए, तो उस हमको पढ़ते हैं विश्वास हो जाता है तो हम भजन करते हैं। इसको कहते हैं वैधि भक्ति, गुरु के आदेश का पालन करने के लिए, अनुशासन का पालन करने के लिए, शास्त्र में ऐसा लिखा गया है तो ऐसा हमें करना चाहिए, हमको करना चाहिए, चाहिए बुद्धि से कि हमें अच्छा है करना चाहिए। जब तक यह स्थिति रहती है तब तक उसको वैधि भक्ति कहते हैं। लेकिन एक ऐसी स्थिति है कि स्वाभाविक अब चाहिए की बात नहीं है, उससे रुचि हो जाता है, करने में अच्छा लगना है, तो उसको रागानुगा भक्ति, राग से प्रेरित होकर, लेकिन वो करता है भक्ति, तो इस तरह से करते करते हमें प्रेम की प्राप्ति होती है। और यही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, यही तो परम फल परम पुरुषार्थ, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ, सबसे बड़ी उपलब्धि जीव के लिए यही है कि वो भगवान के प्रेम को प्राप्त करे। यही तो परम फल, यही परम फल है, अब इससे भी श्रेष्ठ कोई फल नहीं है, सबसे उत्कृष्ट, सबसे मधुर, सबसे सुंदर, सबसे महत्वपूर्ण फल यही है। यही तो परम फल और परम पुरुषार्थ, शास्त्र में चार पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इससे भी उत्कृष्ट, इससे बहुत श्रेष्ठ, इन दोनों में तुलना नहीं की जाती, वह परम फल, यही तो परम फल परम पुरुषार्थ, जार आगे तीर्ण तुल्य चारी पुरुषार्थ, जिसको उस फल की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए संसार का कोई बड़ा से बड़ा आकर्षण, अरे संसार के आकर्षण की बात भूल जाइए, स्वर्ग का जो सुख है, जिसको भगवान भी कहते हैं कि तीर्थम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, विशाल वैभव है, उससे जन लोक में, महर लोक में, तप लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में जो सुख है, आनंद है, उससे भी कई गुना गुणित होता है, तो सुख होता है ब्रह्म सायुज्य में मुक्ति प्राप्त कर लेने में, लेकिन वह भी नगण्य बन जाता है, तुच्छ बन जाता है, इनसिग्निफिकेंट बन जाता है। तो इस तरह से यह सोपान है, ऐसे ऐसे रूप गोस्वामी जी कहते हैं कैसे हमको वहाँ तक जाना हो, तो जाने में क्या मैंने क्या क्या हमें बीच कौन कौन से रास्ते से गुजरना होता है और कैसी कैसी हमारी मानसिक अथवा शारीरिक हमारे परिवर्तन होता है, उसको यह वर्णन किया गया। ठीक है, मैं समझता हूँ कि उचित समय है, अब हम समाप्त करते हैं। ये तो मैंने भक्ति प्रेम प्राप्त करने के, भक्ति प्राप्त, देखिए यह तो अभिलाषा ही नहीं होनी चाहिए, प्रश्न बहुत मैं समुचित नहीं मानता हूँ इसको, यह दोनों को मिक्स मत कीजिए, बड़े जबरदस्त शब्दों में रूप गोस्वामी भक्ति रसायन सिंधु में कहते हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्य कथम अभ्युदयो भवेत, जब तक आपके हृदय में यावत भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, जब तक आपके किसी के हृदय में, आप मतलब मेरा इंक्लूड मी आल्सो, बुरा मन नहीं आएगा, मैं जब आप कहता हूँ तो मैंने अपने को ही इंक्लूड के कहता हूँ कि जब तक हम लोगों के हृदय में भुक्ति मतलब भोग, संसार का जो प्राकृत भोग, और मुक्ति की स्पृहा भी है, और उसको तुलना कैसे की जा रही है, पिशाची, पिशाची एक प्रकार की राक्षसी, एक प्रकार की स्त्रियां होती हैं जो बच्चे को मार देती हैं जान से, अथवा जीवित ही उसको फाड़ कर खून पी लेती हैं, उसको पिशाची कहते हैं, बच्चे को ऐसे छटपटा रहा है, छाती को चीर दिया और मुंह लगाते हैं, शक कर लेते हैं खून को, तो भुक्ति और मुक्ति यदि पिशाची यदि आपके हृदय में है, तब तक उस हृदय में तावत भक्ति सुख से, भक्ति का क्या आनंद होता है, सुख क्या होता है, कभी भी स्वप्न में भी भक्ति सुख का उदय नहीं हो सकता है। अब तो आज समय किसी दिन हम बता ही देंगे कि इस श्लोक को लेकर कितना भारी विवाद, और वल्लभाचार्य जी और रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी, कोई वल्लभाचार्य जीव गो रूप गोस्वामी से नहीं हुआ, लेकिन वल्लभाचार्य जी से और इनसे जीव गोस्वामी से इतना भारी टक्कर हुआ था। वो कह रहे थे, वल्लभाचार्य जी कह रहे थे कि आप क्या बात कर रहे हैं, उनको मन में कि मैं कुछ करेक्ट कर दूंगा, बहुत अच्छा लिखा है लेकिन थोड़ा लगता है कि अतिशयोक्ति है, तो कह रहे थे मैं करेक्ट कर दूंगा। तो रूप जीव को स्वामी जब कथा तो हम नहीं बताएं कैसे कैसे जमुना जी के तरफ, उन्होंने कहा कि आप क्या करेक्शन करना चाहते थे? तो अरे जो जिस मुक्ति की बड़े बड़े जोगी लोग वांछनीय है, वेदों वैदिक ग्रंथों में बताया गया है कि उसको कितना उपादेय वस्तु है, उसकी तुलना राक्षसी से, स्त्री से, और वह भी स्त्री कैसी जो बच्चों को मारकर अथवा बिना मारे छाती को फाड़ देती है, वहाँ मुँह लगाती है, शक कर लेती है। तो मुक्ति वह जब तक मुक्ति की इच्छा भी है तब तक आपके हृदय में भक्ति का क्या सुख होता है, भक्ति का क्या स्वारस्य है, उसका उदय हो ही नहीं सकता है। आस्वादन तो बहुत दूर की बात है, आस्वादन करेंगे उदय ही नहीं होगा। जब ऐसा जगह जब तक आपके हृदय मुक्ति की इच्छा है, तो मान लीजिए हम कहते हैं कि आम के फल को यहाँ पर प्रेम कहते हैं, तो यहाँ इस भूमि में आम उत्पन्न ही नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आम उत्पन्न होगा फल नहीं देगा, अथवा फल हो जाए लेकिन किसी कारण से आप रिच नहीं कर पाएंगे आस्वादन, वो नहीं। भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिसाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्य कथम अभ्युदयो भवेत्, वहाँ उजमेगा ही नहीं। यदि यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है मुक्ति की कामना लगा हुआ है, तो इस क्षेत्र में, इस मंदिर में वहाँ वो पेड़ ही नहीं, बीज लगाएंगे सूख जाएगा, चाहे उत्पन्न ही नहीं होगा। तो इसको मिक्स कभी नहीं करने का प्रयत्न करना चाहिए। अब तो हमारे पास कम समय है ना, हम तो यदि पहला ही अध्याय हुआ होता तो और अच्छा होता। तो ठीक है, हम इतने कम से कम तो समय का भी आप लोग ध्यान, समय एकदम, हम एकदम समय से रहना चाहते हैं। मैं आज समय से चालू कर दिया था, इसलिए जो विधि विधान के अनुसार किया जाता है गुरु के आज्ञा का पालन करने के लिए, शास्त्र की आज्ञा का पालन करने के लिए, मतलब कि उसके अनुशासन में, मतलब कि महत्व बुद्धि से प्रेरित होकर करते हैं। शास्त्र पढ़े उसमें तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वर श्रोतव्य कृतितव्य ध्येय पूज्यस्य नित्यदा, भागवतम में कहा गया है, इसमें आपकी श्रद्धा हो गई, शास्त्र में कहा गया है हमको ऐसा पालन करना चाहिए, करना चाहिए भगवान का श्रवण करना, तो यह वैधि भक्ति है। और जो राग से प्रेरित होकर आप कोई लीला पढ़े, मान लीजिए माँ यशोदा के उस माँ यशोदा उखल बंधन कर उस लीला को पढ़ लिए, और पढ़ लेने के बाद आप में ऐसा हुआ कि अरे हमें माँ यशोदा के समान प्रेम उत्पन्न करना, हमको होना चाहिए, तो उससे प्रेरित होकर किसी भक्त का चरित्र पढ़े आप, और उसने देखा अरे इतना उसने भक्ति प्राप्त हुई थी, इतना प्राप्त किया तब मुझे प्राप्त कर, उसके प्राप्त करने के लिए आप में जो लोभ हो जाता है, राग हो जाता है, प्रेम हो जाता है, तो वैसा हमें करना है। तो फिर आता है शास्त्र में, देखता है अरे भाई शास्त्र में क्या गया, साधु संघ भी करेगा क्या कहा गया, हमको वह प्राप्त कर, हम यशोदा जैसा प्रेम प्राप्त करना है, गोप सखाओं जैसा हमको प्रेरित करना, तो वह जो प्रेरित हो रहा है, जो हमारे भक्ति में करा रहा है, वह किस लिए? इसलिए नहीं कि हम शास्त्र में पढ़ाए तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरीश्वर, अरे भाई तुम जीव हो भगवान का भजन करना चाहिए, इसलिए नहीं, उससे वह उद्धर से वह गवर्न होने लगता है, ऊपर से हमें राग प्रेम प्राप्त करना है, स्पष्ट है ना? नहीं, सब करता है, क्योंकि उसको तो और दृढ़ता से करता है, उसे गरज होती है कि हमें वह प्राप्त करना है, और एक एक डिटेल को पालन करता है, भय लगा रहता है कहीं से हमसे भूल ना हो जाए, राग से प्रेरित है। लेकिन वो कर रहा है, जैसे हम एक टिपिकल उदाहरण देते हैं कि चीरहरण के समय बार ही है ना, कि हम सवा बार नहीं हैं, जब गोपियां के चीरहरण भगवान कर लिए, तो भगवान बाद में बताए कि आप लोगों से इस साधना में अपराध हुआ है। वह क्या अपराध हमसे हुआ है? तो नग्न स्नान हुआ है, तो आप लोग तुरंत प्रणाम करो, क्षमा मांगो, तुरंत उन्होंने किया कि यदि हम लोग नहीं करते, हमारे व्रत में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई होगी, रह गई है, तो हमें कृष्ण पति रूप में प्राप्त नहीं होंगे, इसीलिए तुरंत जो कहते हैं करना है। तो बल्कि राग से प्रेरित होकर जो भक्त, ऐसा नहीं कुछ भजन क्रिया का, तो वह जितना बढ़िया से करता है दूसरा कोई नहीं कर सकता है। हाँ, विधि वाले तो चले भाई, शास्त्र में कहा गया है छोड़ो, एक दो दिन चलेगा भी, लेकिन राग नहीं, उसको लोभ है कि हमें प्राप्त करना है, तो वो सभी को बहुत निष्ठा के साथ भजन क्रिया में तो वो बहुत लगता है, हम लोग की एक भ्रांत धारणा है कि जो रगान का प्रकट हो गया तो चलो वो तो हो गया, वो तो सिद्धि, उसको क्या करना है। हाँ, बल्कि वो और विधि एकदम बढ़िया से वो सतर्क रहता है कि हमारे भक्ति में किसी प्रकार के त्रुटि न हो। ये दूसरी स्थिति है कि वह एक स्तर पर जरूर पहुंच जाता है कि कभी कभी उसको वैदिक भक्ति का आचरण उसके द्वारा हो नहीं पाता है। जैसे हम पढ़े हैं राजर्षि भरत के विषय में, जब पूजा करते थे भगवान के श्री विग्रह जंगल में पूजा करते थे तो इतना आंसू आने लगता था, आँख से आंसू आने लगता था कि रुकना पड़ता था उनको। जो सुबह में पूजा करना है वह पूजा कभी दो बहर में पूरा होता था, कुछ हो भी नहीं पाता था। इतना आंसू आने लगता था कि बीटी दिखाई नहीं पड़ती थी, दीपक लेंगे तो इतना आंसू तक बुझ जाता था। तो एक स्थिति होती है कि वो एक प्रेम में इतना वह भगवान के प्रति उसका मन लग जाता है कि कुछ क्रियाएं उससे हो नहीं पाती हैं, लेकिन उसका इंटेंशन नहीं होता है। जब होश आता है कि अरे हमसे गलती हो, तुरंत उसको पूरा करता है। तो साधना भक्ति का अथवा ऐसे भजन क्रिया का वो और भी सुदृढ़ता से पालन करता है। ठीक है, फिर बाद में कर लें कि महाराज रागानुगा। देखिए, जहाँ पर रागानुगा भक्ति की चर्चा की गई है तो देखिए परिभाषा ही बताया गया है। रागानुगा राग के पीछे चलने वाली, राग अनुगा राग के पीछे पीछे जो चलती है उसको रागानुगा कहते हैं। और वहीं पर श्लोक में बताया गया है कि जो ब्रजवासियों में भगवान के प्रति स्वाभाविक आकर्षण है उसको रागात्मिका भक्ति कहते हैं। रागात्मिका यह शब्द का प्रयोग है। ब्रजवासियों के हृदय में भगवान के प्रति जो सहज स्नेह है, सहज आत्मीय भाव है, सहज ममत्व है, सहज उनका जो प्रेम है, अनुराग है, उसको उसका नाम है रागात्मिका। और जो रागात्मिका का पीछे चलती है उसको रागानुगा कहा गया। उसको रागानुगा कहते हैं। समझ, राग मतलब प्रेम, चाहे अनुराग इसे कहते हैं, स्नेह ममत्व। जो यह शब्द का प्रयोग किया गया है कि जो ब्रजवासियों के हृदय में स्वाभाविक कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, राग है, अनुराग है, तो ममत्व है, उसका नाम है रागात्मिका। उसी को कहा गया है कि माँ यशोदा के हृदय में जो कृष्ण के प्रति स्नेह है स्वाभाविक ढंग से, उसको रागात्मिका कहते हैं। और उसका जो पीछे जो चलती है जो भक्ति, उसको रागानुगा कहते हैं। एकदम हूबहू इसी सेंस में यहाँ पर जहाँ रागानुगा भक्ति की चर्चा आई है तो कहा गया है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ समाप्त करते, फिर अगला सत्र प्रारंभ करेंगे। और प्रार्थना है कि अब समय से आना चाहिए, आज तो अब क्या तो खत्म हो गया, कम से कम अब नहीं जाना है ना, आफ्टरनून वाला है तो समय से आते हैं तो समय से भी खत्म हो जाता है, बढ़िया होता है। हरे कृष्ण, धन्यवाद।